अब आ जाए। अब हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम आगे इंशाल्लाह ताला तफसीर करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक लास्ट टाइम की थी आयत नंबर 67 तक। इंशाल्लाह उससे आगे हम चलते हैं, आप देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ से आप अगली यानी आयत 70 तक आप देखेंगे चार वजूहात अल्लाह ताला ने बयान की हैं कि इनमें से क्या कोई वजह हो सकती है तुम्हारे तकबर की। पिछली आयत में तकबर की बात आई थी ना कि क्यों तुम तकबर करते हो, कुरान से तो तुम्हें तकबर है और उसके आगे तो तुम अपने आप को इतनी बड़ी चीज़ समझते हो कि हम इसकी तरफ क्यों आए, लेकिन क्या वजह है इसकी, क्या इनमें से कोई वजह है। अब ये ऐसी सवाल हैं जिनको इस्तफहाम इनकारी कह सकते हैं, यानी जो उसका जवाब है वो नहीं में ही होगा। जो जो अल्लाह ताला ने सवाल पूछे हैं ना, असल में क्या है कि इनमें से असल में कोई भी बात नहीं है, लेकिन उनकी अकल को शऊर को जगाने के लिए उनसे पूछा गया क्या ये वजह हो सकती है, क्या ये वजह है कि तुम नहीं आते कुरान की तरफ। तो देखते हैं कि वो चार बातें क्या कही गई। अफलम यद्दबरुल कौला, क्या उन्होंने तदब्बुर नहीं किया कौल में, कलाम में यानी कुरान में, क्या इन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर ये कुरान में गौर व फिक्र करते तो कभी इसे तकब्बुर ना करते, कभी इससे दूर ना भागते। जो कुरान में गौर व फिक्र कर लेता है वो तो जान लेता है कि ये हक है, ये ऐसा अकल को अपील करने वाला कलाम है। अम जाअहुम मा लम याति आबाअहुमुल अव्वलीन, या आया इनके पास वो जो इनके आबाओ अजदाद के पास नहीं आया था, क्या इनके पास कोई ऐसी अनोखी बात आ गई है जो इनके आबाओ अजदाद के पास नहीं आई थी। भाई पिछले लोगों को भी तो ऐसे ही किताबें मिली, सहीफे मिले, उनके लिए भी तो हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने वक्तन फवक्तन कलाम उतारे, तो क्या इनके पास कोई अनोखी बात आ गई है कि ये कह रहे हैं कि इतनी स्ट्रेंज बात है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक। देखिए आज भी कुरान से भागने का सिलसिला जारी है। तो अल्लाह ताला ने सभी से पूछा है गौर नहीं करते तुम, गौर तो करो इसमें, इसमें तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का मकसद मिलेगा, क्यों तुम्हें ये मुश्किल लगता है, क्यों तुम्हें ये अजनबी लगता है। लोगों से सवाल करके असल में उनको झंझोड़ा गया है ना। अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, या उन्होंने रसूल को नहीं पहचाना जो वो इनकार करने लगे में, ये क्या नहीं ये जानते, क्या ये रसूल इनके लिए कोई अजनबी है। यानी आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें ही अपनी जिंदगी गुजारी थी, वो कोई अजनबी आदमी नहीं थे कि जिनकी बात पे ये कह सकें कि नहीं जी हमने नहीं इनकी बात मान ली क्योंकि ये तो एक स्ट्रेंजर है, पता नहीं क्या बात कह रहे हैं, हमें क्या पता सच्चा भी है या नहीं है। भाई तुम्हारे अंदर तो वो आदमी रहता था, उसने 40 साल तुम्ही में गुजारे, तुम उनकी पैदाइश के बारे में, तुम उनके खानदान के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में, उनके किरदार के बारे में सब कुछ जानते हो। चलो कोई स्ट्रेंजर होता, कोई तुम्हें सड़क पे मिल जाता जाता वो और वो तुम्हें कहता आओ किताब की तरफ और ये मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो तुम शायद कह सकते थे कि भाई हम क्या जाने, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, हमें क्या पता। लेकिन अब तो तुम इनकार नहीं कर सकते, तुम तो बहुत अच्छी तरह जानते हो इस रसूल को। ये चौथी बात क्या कही, अम यकूलून बिही जिन्ना, या वो ये कहते हैं कि इसके साथ जुनून है। भाई कोई तो वजह होनी चाहिए इस कुरान की तरफ नहीं आने की, या क्या तुम ये समझते हो कि ये दीवाना है मजनू है। नऊज़ु बिल्ला, इनकी अकल सलामत नहीं है, इस वजह से नहीं तुम मान रहे, क्या वजह है इस कुरान से भागने की, वजह क्या है तुम्हारी। इन चार वजूहात में से कोई तो वजह होनी चाहिए, कुछ तो बताओ। बल जाअहुम बिल हक, बल्कि तो वो तो इनके पास हक लेकर आया है, वो तो इनके पास सच्ची बात लेकर आया है, फिर मानते क्यों नहीं है। इसलिए कि अक्सर हम लिल हक के कारी हूं, इसलिए कि अक्सरियत जो लोगों की है ना वो हक को पसंद नहीं करती। और आज भी देखें कोई और वजह नहीं होती, बस वजह क्या है, हक नहीं पसंद। क्योंकि जो हक है वो इंसान को फिर अगर उसको मान जाएंगे तो फिर अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, फिर वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकते। तो इसलिए अक्सर लोग हक को नहीं पसंद करते, दीन को पसंद नहीं करते, अल्लाह का बताया हुआ तरीका इनको पसंद नहीं है। ये अपनी ख्वाहिशात के बंदे हैं ना, ये चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं वैसे हो। हक को मान लिया तो हक की पैरवी कौन करे फिर, तो ये हक के दुश्मन है। हाँ हक इनकी मर्जी का हो जाए तो फिर हाँ मान लेंगे, लेकिन अब इसलिए नहीं कबूल क्योंकि हक हमारे मुताबिक नहीं है। तो ये भी इंसान के लिए एक इम्तिहान बन जाता है कि हक उसके सामने आ जाए और फिर वो उसको कबूल करता है या नहीं। वलव इत्तबअल हक्कु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्दु वमन फीहिन। तो अल्लाह ताला ने इसका भी जवाब दे दिया कि अगर हक तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाए ना, जैसे कि तुम चाहते हो, और उस जमाने में लोग क्या चाहते थे कि अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक बनाए, और ये चाहते थे कि जिसको हम चाहते हैं वो रसूल बने, हमारी मर्जी का रसूल आना चाहिए। ये तो रसूल नहीं, ये कुछ बड़े खानदान से कोई बड़ा सरदार रसूल होना चाहिए था, ये था उनका मुतालबा। और ये भी फिर के कुरान भी हमारी मर्जी के मुताबिक हो, कहते थे कोई और कुरान ले आओ, ये वाला नहीं हमने मानना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मानते इसलिए नहीं है हक को, इसलिए नापसंद करते हैं। जी असल में बात ये है, बहुत लोगों की मेजोरिटी दुनिया में ऐसी ही होगी, आपको मिलेगी आज भी, जो हक को पसंद नहीं करती। और किस लिए नहीं पसंद करती, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ का भी जवाब दे दिया कि अगर इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाता ना हक, तो दुनिया में ये आसमान और ज़मीन कायम ही नहीं रहते, इतना फसाद होता। किस तरह, देखें आप एक क्लास में लोग हैं ना, छोटी सी क्लास भी है, तब भी उसमें हर एक की अपनी अपनी राय होती है, हर एक अपनी तरह सोचता है। कोई कहता है ऐसे पढ़ना आना चाहिए, कोई दूसरा कहता है वैसे होना चाहिए, कोई कहता है ये टाइम हो, कोई कहता है वो टाइम हो, कोई कहता है फलाना दिन अच्छा है उस दिन क्लास होनी चाहिए, कोई कहता है दूसरे दिन होनी चाहिए, यानी मुत्तफिक हो ही नहीं सकते। तो इस कायना इतनी छोटे थोड़े से लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, एक चीज़ पे नहीं मुत्तफिक हो सकते। तो आप खुद बताएं कि इस कायनात को चलाने के लिए, इसके निज़ाम को चलाने के लिए, कि कौन खुदा होना चाहिए, किसको शरीक करना चाहिए, अगर वाकई अल्लाह ताला नऊज़ु बिल्ला किसी को शरीक ठहरा लें, शरीक बना लें अपना, चल सकती है ये कायनात? इसका निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, इतनी डिस्ट्रक्शन होगी, ये कायम ही नहीं रह सकती। इसमें अमन व अमान और हारमनी इसी वजह से है कि इसका बनाने वाला और चलाने वाला सिर्फ एक रब है। तो अगर इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चला जाए ना, तो दुनिया में तो ये कायनात में इतना फसाद हो जाए, ये तो कायम ही ना रहे। तो ना दुनिया के निज़ाम चलाने में, इसी तरह तकदीर के मामले में, अगर हर एक की ख्वाहिश देखी जाए, कोई कुछ चाहेगा कोई कुछ चाहेगा, तो ये काम अल्लाह ताला का। वो एक इसमें कहानी आती है ना कि एक आदमी की दो बेटियां थी, उसने दोनों को ब्याहा, तो एक बेटी से मिलने के लिए गया, तो उसने कहा, उसका शौहर जो था वो किसान था, जिमींदार था, तो उसने कहा कि अब्बा जान आप दुआ करें कि बारिश हो जाए तो हमारी फसल अच्छी हो जाए। उसने कहा ठीक है। दूसरी के घर गया, तो उसका हस्बैंड जो था वो कुम्हार था, तो उसने कहा अपने बाप से कि आप दुआ कीजिए कि बारिश ना हो, अब बारिश हो गई तो हमारे जो जो बर्तन है ना, ये पकेंगे नहीं, धूप निकला है। तो आप देखें, ये तो एक छोटी सी कहानी है, किस्सा है, कि हर एक अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चाहता है। इस कायनात में भी देखें, हर एक जो भी अल्लाह से भी मांगता है ना, कोई कुछ मांग रहा है, कोई चाहता है कि हाय सर्दी हो जाए, कोई चाहता है कि गर्मी होनी चाहिए, कोई चाहता है कि फलां अब चीज़ मुझे मिल जानी चाहिए, दूसरा चाहता है कि नहीं मुझे मिलनी चाहिए, कोई चाहता है कि फलां की तकदीर में बेटा हो, कोई चाहता है कि नहीं मुझे बेटी मिलनी चाहिए। अब हर एक बंदा जो है ना, अपने अपने मुताबिक मांगता भी है, ख्वाहिश भी रखता है और चाहता है कि उसी के मुताबिक हो जाए। लेकिन अगर वही सब कुछ होने लगे जो आपकी ख्वाहिश है, या जो इस कायनात में हर बंदा है उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये दुनिया चलने लगे, तो फिर खुदा कौन बन गया? खुदा तो आप खुद ही बन गए। फिर उस रब को तो खुदा ना बनाया। खुदा तो वही है कि जिसकी मर्जी चलती है, और बंदे को बंदा ही बन के रहना चाहिए। वो तो गुलाम ही है, उसको तो नीचा ही रहना चाहिए। ये ना सोचें कि मेरी ही मर्जी चले, मर्जी चलेगी तो रब की, हम उसके गुलाम हैं। तो अगर अल्लाह ताला हर एक की ख्वाहिशात के मुताबिक करने लगता ना, ये दुनिया ने चल ही नहीं सकना था। बल अतैना हम बी जिक्रिहिम फहुम अन जिक्रिहिम मुअरिदून। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तो इनके पास इन्हीं का जिक्र लेकर आए हैं, लेकिन इनको देखो जरा, अपने ही जिक्र से मुंह मोड़ने वाले हैं। यहाँ पे जिक्र से मुराद क्या है? कुरआन। यानी ये कुरआन जो है, इसमें किसका जिक्र हो रहा है? थ्रू आउट अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, किसका जिक्र हो रहा है? हम इंसानों का ही तो है ना, हम इंसानों का जिक्र है। किस तरह हम फला पा सकते हैं, अगर हमने ये काम ना किए तो क्या होगा, पहली बस्तियों में क्या हुआ, वो भी सारा इंसानों का ही जिक्र है। इंसान के साथ आगे फ्यूचर में क्या होना है, वो भी सारा उसी का जिक्र है। तो ये सारा जिक्र इसमें किसका है, इसका टॉपिक क्या है? इंसान, इंसान के गिर्द घूमता ही है। लेकिन देखो इंसान कैसा गाफिल है, अपने ही जिक्र से जिसमें उसी की बातें हैं उसी से मुंह फेर रहा है। आप खुद सोचिए, अगर आपका जिक्र कहीं किसी अखबार में आ जाए, आपका नाम वहां पे लिखा हो कि भई आपने ये कोई कारनामा किया है, या वैसे ही आ जाए कि आप फलां जगह गई थी, आपकी कोई मसलन पिक्चर अगर लग गई किसी दिन अखबार में, किसी जगह आप गई तो वहां से इत्तेफाकन आपकी पिक्चर ले ली गई। अब आप खुद बताएं क्या करते हैं उस अखबार के पीस को? संभाल के रख लेते हैं, 10 साल बाद भी दिखाएंगे दूसरों को, ये देखो मेरी तस्वीर छपी थी एक दफा अखबार में, ये देखो मेरा नाम आया था अखबार में। तो इंसान तो अपने जिक्र को इतना पसंद करता है ना, कोई अगर बता दे तुम्हारा जिक्र हुआ था वहां पे, कितना तजस्सुस, अच्छा मेरा जिक्र हुआ था, कितना तजस्सुस होता है, क्या जिक्र हो रहा था। तो इस कुरान में तो तुम्हारा ही जिक्र है, मेरी और आपकी कहानी है इस कुरान में, लेकिन देखो ये कैसे मुंह मोड़े में, अपने ही जिक्र से दूर भागते हैं। अम तसअलुहुम खरजन फखराजु रब्बी का खैर। क्या आप अब एक और सवाल करते हैं अल्लाह ताला? ये कुरान की तरफ ये पांचवा सवाल है, ये पीछे चार हुए थे ना, उसके बाद इस चीज़ का जवाब दे दिया गया, फिर उसके बाद अब ये पांचवा सवाल, यहाँ पे नंबर 5 लिख लें इसके साथ, कि या तुम इनसे कोई सवाल करते हो क्या, तुम इनसे कुछ मांगते हो क्या कि ये कुरान से भागते हैं? आपसे कोई फीस मांगी जाती है क्या? आप अपना बताएं, वो तो कुफारे मक्का की बात हो रही, अल्लाह ताला ने फरमाया ये बताएं इनसे, ये पूछें जरा ये बात, आप पूछिए इनसे ये सारे सवालात पूछें कि भाई आपसे क्या कुछ मांगा जाता है, मैं आपसे क्या कोई टैक्स वसूल करता हूँ, कोई फीस मांगता हूँ कि भाई आपको ये मैंने तबलीग करनी है, ये कोई अच्छी बात आपको बतानी है जिसमें आपका आखरत का फ़ायदा है। देखिए आज दुनिया में जो फ़ायदेमंद बात आपको बताता है ना, कोई बगैर फीस के नहीं बताता। एक डॉक्टर भी है, वो आपको एक फ़ायदेमंद चीज़ बता रहा है जिससे आपको शिफा हो जाए, वो भी बगैर फीस के नहीं बताएगा, ठीक है। फिर इस तरह एक टीचर है, आप देखिए आपने आज तक पढ़ा होगा, किसी स्कूल कॉलेज में आप बगैर फीस के गए हैं? नहीं भी हो तो मिनिमम फीस ज़रूर कुछ ना कुछ रखी होती है। कोई भी फ़ायदेमंद इल्म जो है ना, मुफ्त में नहीं देता। लेकिन देखो ये इल्म अल्लाह ताला ने फरमाया क्या, इनसे पूछो मैं तुमसे कोई फीस लेता हूँ, कोई तुमसे कोई टैक्स लेता हूँ, मेरे लिए तो क्या है, फखराज रब्बी का खैर, मेरे रब का दिया हुआ मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए वो ही काफ़ी है, मुझे तुमसे नहीं चाहिए कुछ भी। वह हुआ खैर और राज़िक़ीन, और वो बेहतरीन राज़िक़ है, रिस्क देने के लिए वही काफ़ी है, मुझे तुम में से किसी से कुछ नहीं चाहिए। और यही एक दाई का, एक दीन की बात पहुंचाने वाले का तरीका होना चाहिए हमेशा, कि वो लोगों से सवाल ना करे, और उसके लिए वो जो उसके रब ने उसको दे दिया वही उसको उसके लिए बेहतर है, और वो उसी के ऊपर नज़र रखे, ना कि लोगों की जेबों पे। तो आज आप भी बताइए, क्या आपसे कुछ मांगा जाता है? आपसे कुछ तकाजा किया जाता है, आपसे कुछ कहा जाता है कि आप ये लेकर आएं, आप ये इतना दें, आप इतना कराएंगे जमा, तो फिर आपको ये कोई इतना कीमती इल्म ये दिया जाएगा। कुछ भी नहीं, फिर भी इससे भागते हो। इन्नका लतदउहुम इला सिराते मुस्तकीम, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम इनसे कुछ मांगते थोड़ी हो, तुम तो इनको बुला ही रहे हो ना सीधे रास्ते की तरफ। और ये भी इनके लिए मुसीबत है, ये भी इनके लिए मुश्किल है। क्या कहते हो तुम इनको, सीधे रास्ते की तरफ ही बुला रहे हो ना, मगर ये बुलाना भी इनके लिए बोझ है। देखिए सबसे आसान काम जो होता है ना, वो सुनना होता है, इसलिए कि सुनने में ना आपको हाथ हिलाने हैं, बोलने में भी इंसान का चलो गला थक जाता है एक लिमिट पे आके, लेकिन सुनने में क्या है, कुछ आपको करना नहीं पड़ता, कोई हिलजुल नहीं करनी पड़ती, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं, बस बैठे हुए हैं तो कानों में जाता जा रहा है, मगर सुनना भी इनके लिए मुश्किल है। कहते सुनाओ भी ना हमें, हालांकि तुम तो उनको बुला रहे हो इस्लाम की तरफ। पैगंबर का काम तो लोगों को अल्लाह से ही जोड़ना होता है, सीधे रास्ते की तरफ बुलाना होता है। इन अल्लज़ीना ला यूमिनूना बिल आखिरती अनिस सिराति लनाकिबून, लेकिन ये जो लोग हैं ना, लोगों की अक्सरियत ऐसी होती है वो आखिरत पे ईमान नहीं रखते ना, और रास्ते से सीधा जो रास्ता है ना उससे मुड़ जाने वाले होते हैं। क्या मतलब हुआ, यानी सिराते मुस्तकीम पे चलना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि आखिरत पे उनका ईमान ही नहीं है। इस सिराते मुस्तकीम पे चलना आसान थोड़ा ही है, आसान नहीं है, जाहिर है उसके लिए कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुछ अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा। सीधा रास्ता है वो रास्ता है जो अल्लाह ने बताया, लेकिन जो इंसान आखिरत पर ईमान नहीं रखता कि मुझे वहां पे जाके कोई जवाब देना है, जाहिर है वो किस पे चलना चाहेगा, वो चलना उस चीज पे चलना चाहेगा जो मेरी मर्जी है, मेरी ख्वाहिश है, और फिर उसकी ख्वाहिश उसको जिधर ले जाएगी वो उधर ही चलता रहेगा। वो क्यों सिराते मुस्तकीम पे चले, क्यों वो अपनी ख्वाहिश कुर्बान करे? ये तो वही कर सकता है जिसको जवाबदेही का खौफ हो। तो अल्लाह ताला ने इनके बारे में ये कंक्लूजन दिया, वलौ रहिमनाहुम वकशफना मा बिहिम मिन दुर्रिन लज्जू फी तुगयानिहिम यअमहून। ये तो ऐसे हैं कि अगर हम इन पर रहम करते और हम खोल देते जो इनके साथ है। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कहा जाता है कि इससे मुराद या तो बदर में जो इनकी शिकस्त हुई, या फिर इससे मुराद वो है जो कहत आया था अहले मक्का पे। इतना शदीद किस्म का कहत था कि यानी ये भूखों मरने लगे हुए थे, और हत्ता कि ये हालत आ गई थी कि मुर्दार भी खाने पर मजबूर हो गए थे, इतना सख्त कहत था। और ये देख के अबू सुफियान जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना हाजिर हुआ, और कहने लगा कि मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ और सिला रहमी की, कि क्या आपने ये नहीं कहा था कि मैं अहले आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा गया हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कहा है और वाकया भी यूं ही है। अबू सुफियान ने कहा कि आपने अपनी कौम के बड़ों को तो बदर के मार्के में तलवार से कत्ल कर दिया, और जो अब रह गए उनको भूख से कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि ये अजाब हमसे हट जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ये अजाब उसी वक्त ख़त्म हो गया। तो उसके बाद ये आयत जो अगली है वो नाजिल हुई कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अगर हम इनके ऊपर अजाब टाल भी देते ना, इनसे खोल भी देते मुसीबत को, तो फिर भी क्या होता, कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, उनके ऊपर मुसीबत आए तब भी नहीं उनको समझ आती कि हमारे ऊपर मुसीबत क्यों आई है, वो तब भी नहीं अल्लाह की तरफ पलटते। अल्लाह ताला ने फरमाया ये फिर भी अड़े रहते अपनी सरकशी में, इसी तरह फिरते रहते, इनको फिर भी अकल नहीं आनी थी। वलकद अखज़नाहुम बिल अज़ाबी फमस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतदर्रऊन। इनके ऊपर हमने इनको पकड़ लिया अजाब के साथ, ये वही अजाब है जो मैं आपको कह रही हूँ जो कहत आया था इनके ऊपर, पर तो वो ना वो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाए कि अपने रब के सामने, मैंने आपको बताया था ना इस्तकानू का मतलब क्या, ना वो यार ठहरना माना भी आता है, तो ठहरे यानी उसके सामने झुक गए, उसके सामने दुआ के लिए नहीं खड़े हुए। अगर अल्लाह इनको अजाब के साथ पकड़ता है तब भी इनको नहीं समझ आती, तब भी नहीं ये आजी करते, ये इतने ढीठ हो चुके हैं। कि अजाब खत्म हो जाए, अजाब को अल्लाह खोल दे, कशफ ना मा बिहिम मिन दुर्रिन, तकलीफ में से जो है वो इनके ऊपर से खोल भी दिया जाए, यानी इनसे दूर भी कर दिया जाए, तब भी ये झुकते नहीं है। फिर भी आप देखें वो अपने कुफर के अंदर, अपने शिर्क में वैसे ही जमे रहे थे, कुछ भी नहीं फर्क आया, कह दूर भी हो गया तो। हत्ता इदा फतहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीद, यहाँ तक कि जब खोल दिया हमने एक दरवाज़ा सख्त अजाब वाला, इज़ा हम फीही मुबलिसून, तो वो फौरन मायूस होने वाले हो गए, उसी वक़्त मायूस हो गए। अब ऐसे लोग जो है ना, वो दुनिया में ये जो कभी मुश्किलात आती हैं, कहत, कभी भूख, या जलजला, या ये चीज़ें, जो लोग इन चीज़ों से नहीं समझते ना, फिर जब अल्लाह ताला कोई ऐसे बड़ा अजाब, यानी या मौत आ जाए या कोई ऐसा अजाब आ जाए, तो क्योंकि ये दुनिया में बाकी जो छोटे छोटे मुश्किलात इनके ऊपर आई थी, इनकी वजह से तो ये अल्लाह की तरफ नहीं झुके, तो जब ये बड़ी कोई चीज़ देख लेते हैं ना, सख्त कोई चीज़ देख लेते हैं, तब इतने मायूस हो जाते हैं हर रहमत से। फिर तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर ऐसे लोगों को क्या चीज़ सीधा करती है, जब शदीद अजाब आता है, आज अपनी इस्लाह नहीं की ना, तो क्या वो बड़ा अजाब देखकर ही सुधरोगे? क्या कब्र का अजाब, या मौत का, या मौत के वक्त ही तकलीफ है, या कयामत का, यही अजाब आएगा तो फिर ही तुम समझोगे? तो उस वक़्त तो फिर ये बिल्कुल इतने दिल शिकस्ता हो जाते हैं, इतने मायूस हो जाते हैं। और आप देखें अक्सर दफ़ा आप ऐसी प्रोग्राम भी देखते होंगे जब जलजले या तूफान, या मैं कोई भी जगह का वो नहीं कह रही, किसी जगह अजाब ही आया है, लेकिन फिर भी आप दुनिया में जो बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, उसके बाद आप देखते होंगे बहुत कम ही लोग हैं जो अपने आमाल के ऊपर गौर करें और अल्लाह के सामने झुक जाएं, आजी कर लें, गिड़गड़ाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा यतदर्रउन, वो आजी करने वाले हैं ही नहीं। अब उनको क्या चीज़ झुकाती है फिर? अजाबिन शदीद, जब बड़ा अजाब का मुंह ही खोला जाता है तभी ये सुधरते हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और अगला रुकू अब शुरू होता है, वहुवल्लज़ी अनशअ लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़ईदा, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल पैदा की है। लेकिन देखो लोगों को कैसे लोग हैं, खलील अम्मा तशकुरून, बहुत ही कम लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं। यहाँ कितना कम है, यानी अपनी ज़िंदगी में कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो, शुक्र के लम्हात कितने कम आते हैं, दोनों माने, यानी कितने कम हैं लोग जो शुक्र अदा करते हैं, और फिर ये भी कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना कम इन चीज़ों के ऊपर गौर करता है, शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला ने ये जो नेमतें हमें दी हैं, इनका शुक्र अदा करना क्या है? शुक्रगुजार कौन होता है? जो ये समझ ले कि एहसान किसका है, मुझ पर ये किसने एहसान किया, एहसान करने वाले का इल्म ही नहीं है, तो उसका शुक्र क्या अदा करेंगे? असल वजह नाशुक्री क्या है? एहसान को मानते ही नहीं, और एहसान करने वाले की पहचान ही नहीं। अगर कान मिले हैं तो समझते हैं ये हमारा हक ही है, फिर हम शुक्रिया क्यों अदा करें? अगर आंखें मिली हैं तो समझते हैं कि बस ठीक है, मिली हैं तो हमेशा से मिली ही हुई हैं, तो क्या हो गया, अब ये कोई बड़ी चीज़ इसको नहीं हम समझते हैं। तो देखें अल्लाह ताला ने इसी बात का शिकवा किया है, देखो ये कैसे लोग हैं, इनको अल्लाह ने ऐसी बड़ी नेमतें दी हैं और देखो ये अल्लाह के सामने झुकते ही नहीं, उसका शुक्र ही नहीं अदा करते, कुछ समझते ही नहीं इन चीज़ों को। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अहकाफ में फरमाया है आयत नंबर 26 में, और बेशक हमने इनको, यानी कौम आद का जिक्र है वहाँ पे, तो इन चीज़ों पर इकतदार दिया था जिन पर तुम्हें इकतदार नहीं दिया, और हमने इन्हें कान और आंखें और दिल भी दिए हुए थे, लेकिन इनके कान और आंखों और दिलों ने इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, जबकि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। यानी कान आंखें और दिल, इसका मतलब है क्यों मिले थे? ताकि हक को पहचाने, अल्लाह को जाने, अपने देने वाले की जो को की जात को कहाँ से पहचानेंगे, इस कायनात में गौर व फिक्र करके, उसकी आयतों में गौर व फिक्र करके। लेकिन इन्होंने देखो, इनके पास आंखें हैं मगर देने वाले के लिए वक्त ही नहीं है कि उसकी के लिए भी, उसकी जात को भी पहचाने, गौर व फिक्र कोई करें। उसके लिए दिल दिया है लेकिन इनका दिल कभी गौर व फिक्र ही नहीं करता, इनका दिल दुनिया के धंधों में ही लगा हुआ है। अब फुर्सत मिले कभी कुछ और सोचने की तो सोचेंगे ना, जब हमारे इतने ओवरवेलमिंग है दुनिया के काम और धंधे और बातें, तो क्या इंसान के पास वो वक्त होगा कि वो गौर व फिक्र करे कायनात में या कुरान की आयात में? देखिए, अगर कायनात में भी गौर व फिक्र करेंगे ना, आंखें देखेंगी, कान कुछ सुनेंगे, दिल गौर व फिक्र करेगा, सोचेगा कुछ। दिल का काम क्या होता है? सोचना ना। तो जब दुनिया के तफक्कुरात इतने ज्यादा हैं, आंखें देखती हैं तो दुनिया की चीज़ों को एक और ही एंगल से देखती हैं, वही मोमिन देखेगा तो किसी और नज़र से देखेगा उन्हीं चीज़ों को। कई दफ़ा आसमान की तरफ देखते हैं लेकिन और ही ख्यालों में देखते हैं, कई दफ़ा कान सुनते हैं, बातों को सुनते हैं लेकिन कुछ और ही सुन रहे होते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनते जिससे कि रब की पहचान हो, देने वाले का पता चले। ये बताएं, हम क्या समझते हैं, हमारी आंखों का मालिक कौन है, कानों का मालिक कौन है, ये दिल किसका गुलाम है? क्या सोचते हैं आप, ये किसने दिया है? जाहिर है जिसने पैदा किया वो उसी का गुलाम होगा ना, उसी की मिल्कियत है ना, उसी की मखलूक है ना, ये मानते हैं ये हम सब। अगर ये वाकई अल्लाह के गुलाम है तो हमने अल्लाह के गुलामों को अपना गुलाम क्यों बनाया हुआ? आप कहते नहीं अपना तो नहीं मैंने बनाया हुआ, लेकिन फिर ये बताइए कि क्या इन आंखों से वो देखते हैं जो अल्लाह चाहता है या वो देखते हैं जो हम चाहते हैं? क्या इन कानों से वो सुनते हैं जो अल्लाह चाहता है या वो सुनते हैं जो हम चाहते हैं? क्या ये दिल वो सोचता है जो अल्लाह चाहता है या वो सोचता है जो हम चाहते हैं? तो फिर गुलामी किसकी हुई, अल्लाह की तो नहीं है? ये तो हमने अपने गुलाम बना लिए, या आंखें वो देख रही हैं जो मैं चाहती हूँ, मुझे नहीं इसकी परवाह कि अल्लाह क्या चाहता है। तो गुलामी तो आपने अपनी करवा ली, हालांकि इनको पैदा तो अल्लाह ने किया था, ये आपके तो नहीं है, आपने पैदा किया क्या? हमने वो देखी है ना, वो प्रेजेंटेशन सारी, कैसे इंसान की तख्लीक हुई, तो उसमें क्या पता चला किसने पैदा किया था? लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं। तो क्या हम शुक्र गुजारों में या नाशुक्रों में? आप देखिए, अल्लाह ताला ने ये शिकवा किया है तो हमें शुक्र गुजारी करनी है, और शुक्र गुजारी यही होगी कि अल्लाह की दी हुई इन नेमतों को उसके रास्ते में इस्तेमाल करना है, इनको अल्लाह ही का गुलाम रहने दें। वह अल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्द, और वो अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने फैलाया तुमको ज़मीन में। व इलैहि तुहशरून, देखो जैसे कोई दानों को फैलाता है, बखेरता है और उसके बाद समेट लेता है ना, तो अल्लाह ताला ने तुम सबको ज़मीन में बखेर दिया। पहले कौन थे? दो लोग थे सिर्फ दुनिया में, आदम और हव्वा, और आज देखें दुनिया के कोने कोने में इंसान फैले में, तो ये किसने फैलाया? ये दो से इतनी मखलूक, इतने आदम, इतने इंसान किसने बना दिए? उस रब ने। आज हमें पता भी नहीं लोग कहाँ कहाँ, कोई गारों में, कोई पहाड़ों में, कोई सहराओं में रहने लगे हुए, जिनका हमें इल्म भी नहीं है, जिनकी हमें खबर भी नहीं है। तो वो रब जिसने फैलाया ना, वो ही समेट लेगा अपने पास। वहू अल्लज़ी युहयी व युमीत, और वो ज़ात है जो ज़िंदा करता है और मौत देता है। ज़िंदगी और मौत भी उसी के हाथ में है। आज तक इंसान ने इतनी तरक्की कर ली, अगर किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते, किसी की जाते हुए रूह को वापस नहीं बुला सकते, और किसी को मौत नहीं दे सकते, तो वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार, और उसी के लिए इख्तलाफ दिन और रात का, यानी दिन और रात का ये जो इख्तलाफ होना है, क्या मतलब है कि मुसलसल दिन नहीं होता और ना ही मुसलसल रात होती है, दिन आता है रात आती है, फिर दिन आता है फिर रात आती है, तो ये जो मुसलसल रात दिन का आना और जाना है, ये उसका इख्तलाफ है। इसमें भी अल्लाह की नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन तुम अफला ताकिलू, तुम अकल नहीं करोगे। अल्लाह ताला ने सूरह कसस में भी फरमाया 71 और 72 आयत में, आप कह दीजिए भला बताओ तो सही, अगर अल्लाह तुम्हारे लिए कयामत तक मुसलसल रात ही रात बना देता, तो क्या अल्लाह के सिवा कोई और इलाह है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी ले लेके आता? अफला या तस्माउन, फिर तुम सुनते नहीं हो। फिर आगे अल्लाह ताला ने पूछा, कुल अरअईतुम इन जअलल्लाहु अलैकुम अन्नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैल तस्कुनूना फी। ये बताओ, अगर अल्लाह तुम्हारे लिए कयामत तक मुसलसल दिन ही दिन बना देता, तो क्या अल्लाह के सिवा कोई इलाह है जो तुम्हारे लिए रात ले आता, जिसमें तुम आराम करते, सकून लेते? अफला तुबसिरून, फिर तुम देखते नहीं हो? ये बातें तुम्हें समझ नहीं आती? लेकर आओ ना जरा रात और दिन। अब तो बहुत अच्छी तरह आपको पता चल गया कि रात और दिन की ये कैसे होता है, जमीन की रोटेशन से होता है। जमीन को रोटेट कर सकता था कोई, घुमा सकता था? लग जाओ सारे इंसान जमीन को घुमाने में, नहीं घुमा सकते। अगर खड़ी हो जाए एक जगह, कौन लाएगा रात और दिन, कौन बदलेगा ये? कभी तुमने इसमें गौर किया? देखिए आप कुरआने पाक में जगह जगह देखेंगे कि हमारे दीन में अक्ल के इस्तेमाल पे कितना जोर दिया गया ना। तुम सोचते नहीं हो, तुम अक्ल नहीं करते, तुम देखते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो। क्यों नहीं समझते? अक्ल करो, यानी अक्ल को, जो अल्लाह ने अक्ल की नेमत दी है ना, इसको इस्तेमाल करें, इस तरफ को भी सोचा करें। और ये सोचना भी इंसान के लिए इबादत है। हर वक्त बैठे अपने ही मसलों में ना सोचते रहा करें, कल क्या पहनूं, तो आज क्या खाऊं, तो वहां किधर जाऊं, तो उसने क्या कहा, तो उसने क्या किया, वो उसमें आपको कोई भी नहीं अजर मिलेगा। लेकिन हाँ, अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करने के लिए सोचें, बैठे लेटे किसी वक्त भी आप सोच रहे हैं, अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र करें, इसी पे गौर व फिक्र कर लें, दिन और रात के आने जाने पे, जिंदगी और मौत पे, इंसानों के फैलने पे, तो आप बताएं कि आप रब को नहीं पहचान सकेंगे? बिल्कुल पहचान सकते हैं, लेकिन हमारी अकल कम ही इन चीजों में इस्तेमाल होती है। बल कालू मिसल मा काल अल अव्वलून, बल्कि उन्होंने कहा उसी की तरह जो पहलों ने कहा था। क्या कहा था पहलों ने? कालू अ इजा मितना व कुन्ना तुराब व इजामन अ इन्ना लम बऊसून, जब हम मर के मट्टी हो जाएंगे तो भला तब हम उठाए जाएंगे? कैसे हो सकता है? वलकद वुइदना नहनु व आबाउना हाजा मिन कब्ल, ये तो वादे पहलों को भी दिए गए और हमारे बाप दादा को भी दिए गए इससे पहले। इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये ऐसी कहानियां हैं, किस्से हैं, कुछ नहीं होना वोना, किसी ने नहीं उठ के आना। ये इंसान कल भी कहता था, आज भी कहता है, क्योंकि इंसान को ये बात बहुत ही मुश्किल लगती है, कैसे उठाए जाएंगे, कैसे खड़े होंगे, नहीं ये होना, ये हड्डियां जब चूरा हो जाएंगी, ये नहीं उठनी, किसने आके उठ के देखा? ये तो पहले उनकी भी बातें यही थी, अब भी यही बातें हैं। हमने सूरह नाजियात में भी पढ़ा हुआ ना, यकूलून अ इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा अ इजा कुन्ना इजामन नखिरा, कहते हैं क्या हम पहली किसी हालत की तरह फिर पलटाए जाएंगे, क्या इस वक्त जबकि हम वो सीधा हड्डियां हो जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? कौन लेकर आएगा, कौन खड़ा कर सकता है? इनको ये कहानियां लगती हैं, किस्से लगते हैं, इसमें शक करते हैं। वो रब जो दिन और रात ला सकता है, मौत और जिंदगी दे सकता है, क्या वो दोबारा नहीं खड़ा कर सकता? क्या इससे तुम ये बात नहीं समझ लेते कि जो इतना बड़ा निजाम चला रहा है, जिसने मौत के बाद जिंदगी दी थी, हम तो कुछ भी नहीं थे ना, जिसने ये पहली जिंदगी दी, क्या वो दोबारा नहीं जिंदगी दे सकता? दोबारा भी खड़ा कर देगा। मौत और जिंदगी को भी इंसान समझना चाहे ना, तो उसके लिए भी रात और दिन पे गौर फिक्र कर सकता है। देखिए, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है ना, इसी तरह मौत थी, फिर उसके बाद जिंदगी आई, फिर अब मौत आएगी, फिर जिंदगी मिलेगी। तो मौत और जिंदगी का भी निजाम ऐसे ही है जैसे रात और दिन का। तो तुम ये बातें, तुम्हें क्यों अजनबी मालूम होती हैं, क्यों तुम्हें नई मालूम होती हैं? कहते हैं ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। कोई आया ही नहीं है तो इसलिए लिहाजा हमने इसको बांधना ही नहीं है। तो कहते हैं पिछले दौर की कहानियां हैं। हालांकि ये नहीं तुम समझते कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, जिसको जिंदगी मिली है उसको क्यों नहीं वो पूछेगा कि तुम्हें जिंदगी दी थी फिर तुमने इसको कहाँ इस्तेमाल किया। जिसको कान मिले हैं तो उसको क्या वो पूछेगा नहीं कि तुमने इनको कहाँ लगाया था, क्या सुना था तुमने इनसे। जिसको बसारत मिली है, नजर मिली है, उसको वो पूछेगा नहीं कि तुमने इस नजर को किधर किधर डाला था। जिसको जहनी कुव्वत मिली है, क्या वो पूछेगा नहीं तुमने उस कुव्वत को किस काम में लगाया था, किधर खपा के आई हो। और मौत के बाद की जिंदगी इसी मकसद के लिए तो है कि आज की जिंदगी के बारे में पूछा जाए और उसके मुताबिक फिर उसकी बेस पे जजा सजा दी जाए। कैसे हो सकता है एक इंसान जो बामकसद जिंदगी गुजार के आए और एक इंसान जो ऐसे ही बेमकसद जिंदगी गुजार के आ जाए, दोनों को बराबर कर दिया जाए, दोनों को ही मट्टी कर दिया जाए, किसी को भी ना खड़ा किया जाए, पूछा ही ना जाए क्यों किया था। कैसे हो सकता है नाफरमान और फरमा बरदार दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाए, ना फरमा बरदार को कुछ मिले और ना नाफरमान को कोई सजा हो। कैसे हो सकता है, अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वाला है। क्या दिन का जाना ये साबित नहीं करता कि किसी चीज को भी दवाम नहीं है, हर चीज को जवाल है। क्या रात का जाना नहीं ये साबित करता कि अल्लाह ताला एक के बाद दूसरे को जब चाहे ला सकता है, अंधेरे में से रोशनी को पैदा कर सकता है, तो मिट्टी में से इंसान को नहीं जिंदा कर सकता। तो आगे अल्लाह ताला ने कुछ सवाल किए, आगे आप देखेंगे तीन सवाल किए गए हैं ये आयत नंबर 89 तक, और इन सवालों के जवाब आप भी दीजिए। अल्लाह ताला ने पूछा है, कुल कह दीजिए ए नबी आप जरा इनसे पूछें, लिमन अल अर्द व मन फीहा इन कुंतुम तालमून। तुम इतने ही जानने वाले हो ना, तुम बहुत अपने आप को समझते हो बड़े जानने वाले, हर कोई इंसान तकब्बुर में ही आके तो इनकार करता है ना, तो तुम बड़े इल्म वाले हो ना, तुम्हें तुम्हारे पास अकल भी है, जरा एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, किसका है ये, किसकी है ये जमीन, व मन फीहा और जो इसमें है, ये सब किसका है। कोई है जो दावा कर सके कि मेरा है, मैंने बनाई है। ये जितने भी लोग खुदा के अलावा अल्लाह के अलावा औरों को पूछते हैं ना, जरा सा उनसे पूछ के देखो क्या ये मिल्कियत का दावा कर सकते हैं कि ये जमीन इन्होंने बनाई है, चाहे कोई भगवान है चाहे कोई 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 भी नाम उसका लेते हैं, क्या ये दावा कर सकते हैं कि ये जमीन इन्होंने बनाई है, जमीन के मालिक ये हैं और जो कुछ इस जमीन में है सब इन्हीं का है, इसकी मिल्कियत इसकी तखलीक का दावा कर सकते हैं। पूछो जरा इनसे किसका है, कोई दावेदार है इसका, जरा बताओ। अल्लाह ताला ने फिर इसका खुद ही जवाब दिया, सयकूलून लिल्लाह, अन करीब वो कहेंगे अल्लाह का, अल्लाह ही के लिए। आप भी क्या कहते हैं, आप सबका जवाब यही होगा ना, अल्लाह का है ना। तो आपको पता है कुफारे मक्का जो मुशरिकी ना मक्का थे वो भी यही कहते थे, अल्लाह ही के लिए। अच्छा तो अल्लाह ताला ने फिर पूछा है उनके इसी जवाब को लेके, कुल अफला तज़क्करून, क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि तुम खुद ही कह रहे हो कि ये जमीन अल्लाह की है और जो कुछ इसमें है वो भी अल्लाह का है। तो ये बताओ कि जिसकी जमीन पे रहते हो उसी का इनकार कर रहे हो, जिसने ये सारा कुछ बनाया तुम खुद ही कह रहे हो कि सब कुछ उसी का है, फिर उसी की नहीं बात मानते, ये कैसा जुल्म है। क्या ये जुल्म नहीं लगता आपको कि जिसके घर में रहते हो, देखिए आप किसी के भी घर में जाके रहते हैं तो फिर क्या करते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं या जो आपको होस्ट कहता है उसकी मानते हैं, अपनी तो ना करते, जिस कमरे में वो सुलाता है उसमें सोते हैं, जहां पे वो बिठाता है वहां बैठते हैं, जो वो खिलाता है वही खा लेते हैं, खुद तो नहीं जा जाके पूरे उसके घर में, मैंने नहीं यहाँ पे नहीं बैठना, मैंने यहाँ पे बैठूंगी, मैंने ये नहीं खाना मैं वो खाऊंगी, खुद ही निकालने लगे चीजें, खुद ही तोड़ फोड़ रहे हैं, खुद कुछ कर रहे हैं, जो उसने मना किया खास तौर पे, जो उसने मना किया भाई ये चीज ना छेड़नी ये चीज नहीं करनी, वही आप जाके कर रहे हैं, उसकी चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे करते हैं कभी आप? अगर कोई ऐसा करे तो उसको क्या कहते हैं आप उसको बदतमीज कहते हैं, आप उसको एहसान फरामोश कहते हैं। देखो इसने उसको अपने घर में भी रखा, उसको अच्छी तरह भी रखा, इसके लिए सारा इंतजाम भी किया, देखो उसी के देखो खिलाफ कर रहा है, ये कितना बुरा इंसान है। हम इंसानों की जुबान में भी यही कहते हैं ना, किसी भी इंसान की अकल ले ले, और कोई बहुत ही बेअकल भी बंदा होगा तो उसको भी ये बात समझ आती है कि देखो ऐसा नहीं करना, ये बेवफाई है, ये नमक हरामी है, इसको यही कहते हैं ना, ये एहसान फरामोशी है। तो देखो तुम खुद क्या कर रहे हो, तुम जिसकी जमीन पे रह रहे हो और हर चीज का मालिक वही है जो इस जमीन में, हम वो सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं ना जो जमीन में, यानी आप उसकी इस्तेमाल की हुई चीजों को, उसकी दी हुई चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका मालिक वो है उनको बरत रहे हैं, उसी में से खा रहे हैं, उसी में से पी रहे हैं, उसी पे रह रहे हैं, उसी पे चल फिर रहे हैं, उसी पे जिंदगी गुजार रहे हैं, उसी में से सांस ले रहे हैं, उसी में से पी रहे हैं। इस दुनिया में, इस जमीन पे जो कुछ भी है, मन फीहा जो भी इसमें है, वो अल्लाह का है। आप वो सब कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने आपको दिया हुआ है, लेकिन साथ उसने ये भी कह दिया, देखो मेरी जमीन पे रहते हुए ना, ये जमीन किसका घर हुआ, उसकी मिल्कियत है ना, अल्लाह का घर है, ठीक है, समझ ले इसको इस तरह। अच्छा अब उसी के अंदर रहते हुए आप उसी की बात नहीं मान रहे, उसने कहा ये नहीं करना, आप वही कर रहे हैं, उसने कहा वहां नहीं जाना, आप वहीं जा रहे हैं, उसने कहा इस चीज को नहीं देखना, आप वही देख रहे हैं, उसने कहा ये नहीं खाना, आप वही खा रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है? ये बात तो एक जाहिल को भी पता थी, ये जिसके घर में रहते हैं उसी की मर्जी के खिलाफ नहीं करना, और तुम जिसके जमीन दीवी के ऊपर रहते हो और बरतते हो उसी के खिलाफ चलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर कुल मान रब्बुस समावाति सबई व रब्बुल अर्शिल अजीम, अब इनसे जरा पूछें दूसरा सवाल, आसमानों का रब कौन है, ये जो सात आसमान है, और अर्श अजीम का रब, वो जो अर्श अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत मखलूक जहां से सारे फैसले आते हैं, बताओ जरा उसका रब कौन है, इसको बनाने वाला, ये तुम्हारे ऊपर जो छत है इसको बनाने वाला कौन है, जिसने तुम्हारे पर ये छत तानी हुई, छत कितनी बड़ी चीज होती है ना एक इंसान के लिए, कहते हैं अपनी छत है। ये बताओ जिस आसमान तले तुम जिंदगी गुजार रहे हो इसका बनाने वाला कौन है? वो अनकरीब वो कहेंगे लिल्ला, अल्लाह ही के लिए, ये सातों आसमान भी अल्लाह के हैं, अर्श भी अल्लाह का है, हम भी यही कह रहे हैं ना, कुल अफला तत्तकून, अरे फिर तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें ये नहीं डर लगता ये अर्श, ये आसमान हमारे ऊपर गिर ना जाए, उसने थामा हुआ है ना आसमान को, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को थामा हुआ है, अब वो नहीं थामे तो ये टल जाए, ये गिर जाए, अगर वो पीस दे हमें इस जमीन और आसमान के दरमियान, क्या हाल हो हमारा, आसमान गिर जाए। अच्छा आप आसमान को गिरने का तो शायद आप ना तसव्वुर कर सकें, मगर ये आपको पता है कई दफा आसमान से कई चीजें, बहुत बड़े पत्थर जो फिजा में है, स्पेस में है, वो आके गिर जाते हैं, उनको भी कुछ कहते हैं ना, वो आके गिर जाते हैं जमीन के ऊपर, तो छोटे छोटे, वो तो कभी कोई हजारों साल में कोई एक हुआ ऐसा वाकया, वरना खला के अंदर ही वो खत्म कर दिए जाते हैं, तो कभी ये शूटिंग स्टार आके गिर जाए यहाँ पे, क्या हाल हो जमीन का, कभी कोई और किसी खबर आ जाती है, वो फलाना एक जो है ना, वो बहुत बड़ा सा पत्थर है, वो हमारी जमीन की तरफ इतनी स्पीड से आ रहा है, अगर ये ना हटा तो फिर तो हमारी बड़ी तबाही हो जाएगी, इतना बड़ा जलजला आएगा जमीन पे, और फिर इतना बड़ा सुराख हो जाएगा, और फिर उसकी वजह से जो धूल उड़ेगी, और फिर पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं फिर, वो आके क्यों नहीं गिर रहे होते, इसलिए कि वो रब ने उसने महफूज बनाया वह जमीन को हमारे रहने के लिए। आप पूरे आसमान का नहीं भी तसव्वुर कर सकते, ऐसी खबरें तो पढ़ते ही होंगे ना, तो कोई चीज आके यहां से गिर जाए, वह पूरा आसमान टूट के गिर पड़े, कौन बचाने वाला होगा, तुम डरते नहीं हो, जिसके आसमान तले रह रहे हो, जिसकी छत के नीचे रह रहे हो, जिसने तुम्हें छत दे दी, आप उसका भी बहुत एहसान मानते हैं ना। इसने हमें छत दी है, जिसने तुम्हें एक छत दे दी, तुम उसी की छत तले रह के उसी की नाफरमानी कर रहे हो, उसी को आंखें दिखाते हो, उसी पे बड़बड़ के बातें करते हो, उसी की नाफरमानी में जिंदगी गुजारते हो, उसी की मानना तुम्हें मुश्किल लगता है। सबसे बड़ा जालिम तो ये है, दूसरों को जालिम कहते हो। इंसान इंसान के साथ जुल्म करे तो कहते हैं बड़ा जालिम है, देखो कितना जालिम है। और इंसान अल्लाह के साथ जुल्म करे, अल्लाह के साथ जुल्म क्या करना है, उसके साथ शिर्क करना जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा जुल्म। और उसकी नाफरमानी करना, देखिए उसका हक क्या था, जुल्म की डेफिनेशन क्या है, हकदार को उसका हक ना देना, ये जुल्म है। उसका हक क्या था, जिसने आपको सब कुछ दिया, आपको पैदा किया, सब आपके लिए सारी नेमतें जमा कर दी आपके पैदा होने से पहले ही, सारी जिंदगी आपको खिलाता पिलाता ठहराता है, हर हर नेमत उसी की दीवी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इस समात बसारत को आप अपना समझते हैं, ये भी उसने कहा कि मैंने ही पैदा की है, तो अपना जिस्म भी उसी का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपकी रूह है, ये जिंदगी भी उसी की दीवी है, हर सांस आती और जाती उसी की मर्जी से है, और फिर आप उसी की नाफरमानी में लगे हुए, फिर उसी के लिए वक्त नहीं निकलता, तो शर्म नहीं आती हमें? हमसे ज्यादा बड़ा नमक हराम और जालिम कौन हो सकता है फिर? तो जुल्म कैसे ये हुआ कि उसकी इताअत करनी थी, उसकी माननी थी, उसी से पूछ के ये जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन जुल्म यही है फिर कि उसको उसका ये हक ना दिया जाए। इताअत उसकी करनी थी, हम औरों की कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्ली शयीन, बताओ जरा तुम एक बात तो बताओ, कौन है जिसके हाथ में बादशाहत है हर चीज की? बताएं कौन है बादशाह हर चीज का? आपकी तो अपनी सांस भी आप उसके भी मालिक नहीं है, आपका दिल चल रहा है ना, आपके ही सीने में धड़क रहा है, लेकिन इसके भी मालिक आप नहीं है। आप तो चाहते हैं कि कभी ये चलना बंद ही ना हो, लेकिन आपकी मर्जी के खिलाफ एक दिन ये चलना बंद हो जाता है। आप तो अपने सांस के भी मालिक नहीं है, आपका दिल चाहता है सांसें कभी ना टूटे, लेकिन एक दिन आपकी मर्जी के खिलाफ ये सांस आनी बंद हो जाती है। आप पूरा जोर लगाते भी हैं, सांस नहीं आती, आप खींचते हैं, वही ऑक्सीजन होती है ना, वही हवा होती है, वही जमीन होती है, वही आपका जिस्म होता है, सांस नहीं आ रही, क्योंकि अल्लाह का हुक्म हो गया, सांस भी तो उसके हुक्म से चल रही है, सांस एक दिन टूट जाती है, तो इसके पर किसका हुक्म चल रहा था? आज तक आती जाती रही इतनी सहूलत से, किसके हुक्म से थी ये? आपने सोचा आपके? आपने सोचा मेरा हार्ट सही काम कर रहा है, लंग सही काम कर रहे हैं, इसलिए आ जा रही है सांस? नहीं, उसके हुक्म से इसका आना और जाना था, तो इसके ऊपर मिल्कियत किसकी है? ये तो छोटी सी एक चीज की बात हो गई, आप बड़े से बड़े पहाड़ों की बात कर लें, समंदरों की बात कर लें, रिस्क की बात कर लें, आसमान और जमीन की बात कर लें, या एक सुई की बात कर लें, एक चींटी की बात कर लें, कौन मालिक है, कौन बादशाह है सबका? अल्लाह ही है ना, सब कहेंगे अल्लाह। तो तुम फिर एक FBI एजेंट से तो डरते हो, एक पुलिस की गाड़ी देख के तो डर जाते हो, पुलिस की गाड़ी तुम्हारे पीछे गाड़ी लेकर आ जाए वो पुलिस वाला, तो तुम्हारी रंग फक होने लगता है। एक अपने जैसे से इंसान से तो तुम डरते हो, तो तुम कह रहे हो कि सारी चीजों का बादशाह वो है, और उससे नहीं डरते तुम? कैसे जालिम हो, कैसा ये तुम जुल्म कर रहे हो? उससे नहीं डरते जिसको तुम मानते हो कि वो हर चीज का बादशाह है? तुम खुद कहते हो वो बादशाह है हर चीज का, फिर उसको छोड़ के औरों से डरने लगते हो, उसको छोड़ के औरों के दर पे जाके झुकते हो, उसको छोड़ के औरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हो, उसको छोड़ के औरों की मानते हो। क्या हो गया हमारी अकलों को? फिर खुद मुंह से बोलते हैं और फिर खुद ही उसका इनकार करते हैं। वह हुआ युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून, और वो पनाह देता है और पनाह नहीं दी जाती उसके मुकाबले में। अगर अल्लाह ताला किसी को पनाह दे, वो गुनाहगार से गुनाहगार को भी पनाह देता है जिसको सारी दुनिया धुतकार देना। लोग कहते हैं लो जी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये देखो इसके काम क्या है, करतूत क्या है। लोग जीने नहीं देते, अल्लाह चाहे वो उसको पनाह दे दे, गुनाहगार से गुनाहगार को अपनी रहमत की आगोश में ले लेता। और चाहे किसी को पकड़ना तो उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता कि आ जाओ मैं तुम्हें अपने पास रख लूं तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मैं तुम्हें पनाह देती हूं। नहीं, अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं पनाह दे सकता। वो पकड़ने लगे तो कोई बचा नहीं सकेगा। फिर अगर तुम्हें इल्म हो बताओ कोई और दे सकता है ये पनाह? सयकूलूना लिल्लाह, तो वो कहेंगे अल्लाह ही के लिए पनाह वाकई वो ही दे सकता है। कुल फअन्ना तुसहरून, फिर बताओ तुम कहाँ से तुम जादू किए जाते हो, तुम क्यों मशहूर हो गए हो, तुम्हारी अकलें क्यों फिर गई हैं? ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई जादू ही हुआ हुआ है, कोई नशा ही इनको चढ़ा हुआ है कि इनको समझ ही नहीं आ रही बात? इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ आती? देखिए सुभान अल्लाह, कैसे 3 सवालों के अंदर कैसे हमारी अकलों को झंझोड़ दिया गया ना। हमारे अपने ही जवाब जो हैं वो हमारे मुंह पे दे मारे गए कि बताओ फिर इसका जवाब, बताओ फिर ये। अगर किसी में थोड़ी सी भी समझ है ना तो ये सवाल उसको जगाने के लिए काफी है। बल अतैनाहुम बिल हक, बल्कि हम तो लाए हैं उनके पास हक को। व इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक वो अलबत्ता झूठे हैं। झूठे क्यों कहा गया? ये तो हक बातें, ये सारी बातें सच्ची हैं। और ये जो जवाब दे रहे हैं ना, हाँ अल्लाह का ये है, हाँ अल्लाह का ये, या तो तुम अपनी इस बात कहने में झूठे हो, या ये जो तुम शिर्क करते हो और दूसरों के पास जाके उनसे मनते मुरादे मांगते हो, ये झूठ है। कोई तो बात झूठ है ना, ये कैसे हो सकता? तुम एक तरफ कहते भी हो कि अल्लाह वही मालिक है हर चीज़ का, वही है, फिर तुम शिर्क भी करते हो, फिर उसकी नाफरमानियां भी करते हो, ये कैसे हो सकता है? एक बात तो झूठी है, या तो तुम्हारा ईमान का दावा झूठा है, तुम ईमान ही नहीं रखते, ये तुम्हारे सिर्फ जुबान की बातें हैं, अमल में कुछ नहीं है, तुम्हारा ईमान का दावा झूठा है। असल तो बात यही है ना कि जो हम बोल रहे हैं सयकूलुना लिल्लाह वन करीब, वो कहेंगे अल्लाह, तो ये जुबान ही है, बस जुबानी कलामी, ये सारी बातें हो रही हैं, दिल में कुछ नहीं है। और ये तो हक है, देखो ये सारा कुछ बता रहा है कि वाकई सच्चाई यही है कि सब अल्लाह ही का है। अत्तखज़ अल्लाहु मिन वलदिन वमा काना माअहू मिन इलाह, नहीं बनाया अल्लाह ने कोई औलाद, कोई बच्चा, कोई उसका बेटा नहीं है, और ना ही उसके साथ कोई और इलाह है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील अल्लाह ताला ने आगे दी है। इसकी दलील ये बात है, इज़न लज़हबा कुल्लु इलाहिम बिमा खलका वला अला बादुहुम अला बाद। अगर अल्लाह के अलावा कोई इलाह होता, और ये बात आप ना बहुत आसानी से जब गैर मुस्लिमों को बात बताने लगे तो ये इतनी सादा सी मिसाल के ज़रिए से ये साबित किया गया कि इस कायनात का इलाह एक ही है। अल्लाह ताला ने कैसी मिसाल दी है? देखो अगर इसको पैदा करने वाला कोई और भी होता, अल्लाह के साथ पार्टनर कोई और भी हो जाता तो क्या होता? देखें दो बराबर के एक चीज़ में अगर मालिक हूँ तो क्या होता है, एक हमेशा दूसरे को नीचे करने की कोशिश करता है, खुद आगे बढ़ना चाहता है, तो अलबत्त चढ़ाई करता है इनमें से बाज़ बाज़ पर, यानी एक दूसरे पर चढ़ाई करने की कोशिश करता, एक दूसरे से जंग करना शुरू कर देता, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता। भाई एक इक्वल तो नहीं ना रह जाते? और ये हर एक अपनी अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता, ये तो मैंने बनाया है मैं इसको लेकर जाऊंगा, ये मेरा है और वो तुम्हारा है, फिर उसके बाद देखें, आप दुनिया में बहुत थोड़े अरसे के लिए दो सुपर पावर्स रहीं, और थ्रू आउट क्या होता रहा, चाहे आमने सामने नहीं भी आए लेकिन थ्रू आउट क्या होता रहा, बीचों बीच एक दूसरे की जड़ें काटने की कोशिश करते रहे, हत्ता कि एक सुपर पावर जिसको हम सो कॉल्ड, तो सुपर पावर तो एक ही अल्लाह की ज़ात ही है, पर जिसको हम दुनियावी तौर पे कहते हैं कि इनके पास बहुत है और ये दुनियावी तरक्की के लिहाज से जिसको देखते हैं, तो देखें आप एक सुपर पावर तो टूट ही गई ना फिर, क्योंकि मुसलसल दोनों के बीच में अंदर ही अंदर क्लैशेस चलते गए, और एक ने दूसरे को तोड़ने की कोशिश मुसलसल की, हर एक ने दूसरे को, क्योंकि रह ही नहीं सकते ना, ये फितरत के खिलाफ ही है, दो सुपर पावर हो ही नहीं सकती, एक ही पावर है, जाहिर है जो मغلوب हो गई, जो दूसरे से मغلوب समझते हैं ना, जो दूसरे से यानी दूसरा उसके ऊपर गालिब आ गया, जो दूसरे के अंडर आ गई, वो तो वैसे ही खुदा नहीं हो सकता, वो तो वैसे ही सुपर पावर नहीं हो सकती, वो सुपर क्या हुई, वो तो दूसरे के अंडर ही आ गई, या वो दूसरे से आगे बिछ गई, या दूसरे के आगे टूट गई, वो तो हो ही नहीं सकती ना सुपर पावर। तो अगर एक मغلوب हो जाए वो सुपर पावर ही नहीं है, दो एक साथ भी नहीं रह सकते, तो दो को फिर माने कैसे, दो को मानने की कोई तो दलील होनी चाहिए ना, कोई तो वजह होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए कि किस बेसिस के ऊपर आप ये कहते हैं कि दो बिल्कुल इक्वल है। अगर आपने कहा कि नहीं बड़ा तो सबसे एक ही है, दूसरा उसे छोटा है, तो दो जो छोटा है फिर भाई खुदा का खौफ करो, फिर वो छोटा खुदा थोड़ी हुआ, खुदा तो वो बड़ा ही हुआ ना, छोटे के पास तो इसका मतलब पावर है ही नहीं है, पर चलेगी तो बड़े की, तो दूसरे को क्यों खुदा कह रहे हो, क्यों उसका पार्टनर बना रहे हो, फिर उसी की मानो ना जो बड़ा है। और यही आप देखें, ये बात साबित नहीं कर सकते, ये मुशरिक भी जो है ना, ये भी एक ही फिर कहते हैं, एक ही सुपर पावर है, बाकी सारे उसके अंडर ही हैं, क्योंकि इस बात के आगे सारे लाजवाब हो जाते हैं, उनको पता है दो रह ही नहीं सकते। एक घर में देखें दो औरतें, दो औरतों को कोई बीवी बना ले, दो दो बीवियां किसी की, दोनों को कहा जाए कि आपके इक्वल हकूक हैं, इक्वल आप मालिक हैं इस घर की, हो सकता है रह सकती हैं क्या, तो कैसे हो सकता है, इस इतने बड़े एक घर की तो दो मालिक ने बन नहीं सकती, हर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, तो इस पूरी कायनात में तुम सोचते हो कि यहाँ पे सारा ऐसे ही निजाम चल रहा है, अगर दो होते ना खुदा, आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती इसका भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, खुदा एक ही है। देखें अगर आप ऊपर आसमान की तरफ सर उठाते और वहां पे देखते कि खून खराबा हो रहा है, तीर फेंके जा रहे हैं, कोई घोड़े इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, जंग हो रही है, ऊपर का सारा निजाम, ऊपर जंग छिड़ी हुई है, दुनिया में तो जंगे बर्दाश्त होती नहीं है, कोई दो खुदा होते तो वो क्या हाल होता यहाँ पे, फिर आप ये मनाजिर देखा करते, आज किसी ने दूसरे के ऊपर सितारा फेंक दिया, किसी ने दूसरे के ऊपर आसमान तोड़ दिया, दुनिया में हम इस तरह आराम से रह सकते थे भला, आपने मगर कभी ऐसा देखा है ऊपर, और दुनिया में तो इंसानों के दरमियान जंगें होती देखी हैं, क्योंकि एक इंसान दूसरे को हमेशा मغلوب करने की कोशिश करता है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा कि आसमानों पे ऐसी कोई वो चीज हो रही हो, करोड़ों सालों से आसमान चल रहा है, जमीन चल रही है, सूरज चांद सितारे ऐसे चल रहे हैं, कोई नहीं आपने इसमें डिस्ट्रक्शंस देखी, कोई नहीं तबाहियां होते हुए देखी, कोई नहीं ऊपर गरज हो रही, आसमान पे एक गरज रहा है, दूसरा गरज रहा है, दूसरा एक को ललकार रहा है, कुछ नहीं आपने चीज ऐसी देखी, क्या ये सब साबित नहीं करता कि खुदा एक ही है, जिसकी वजह से फिर इतना सुकून है, क्योंकि एक की मर्जी चल रही है ना, दो दो की मर्जियां चलती तो यकीनन, अब आपको मैंने मर्जियों की बात बता दी, आप दो इंसान नहीं बैठ के एक चीज को अपनी यानी एक चीज पे इत्तेफाक कर सकते, तो इतनी बड़ी कायनात चलाने के मामले में दो खुदा इत्तेफाक कर सकते थे, एक कहता सूरज ईस्ट से निकलेगा, दूसरे ने कहा वह वेस्ट से निकलेगा, जिसने दूसरे की मान ली वो तो खुदा है ही नहीं, सबसे पहली बात ही खत्म हो गई, वो खुदा ही नहीं है जिसने दूसरे की मान ली, इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा एक ही है, एक ही का कानून चल रहा है, एक ही की बात चल रही है, एक ही का निजाम चल रहा है, इसी वजह से पूरी कायनात में इतना सुकून आपको नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, पाक है अल्लाह इससे जो वो बयान करते हैं, यानी ये सारी बातें बेकार की फजूल बातें, दो खुदाओं का जो ये तसव्वुर लेकर आते हैं, अल्लाह ताला इस इन सारी बातों से पाक है। आलिमिल गैबि व शहादा, जानने वाला है गैब का और हाजिर का। फ़तआला अम्मा युशरिकून, वो गैब और हाजिर को जानता है, वो इससे बुलंद है जो ये शरीक ठहराते हैं उसके। अगर कोई और इलाह होता तो वो उसको जानता, लेकिन वो गैब और हाजिर हर चीज को जानने वाला है। उसको मालूम है कि इस कायनात में उसके अलावा कोई और उसका साझी साथी नहीं है, वो शिर्क से पाक है। और ये भी इसका मतलब है, शिर्क देखें दो तरह का होता है ना, एक शिर्क के खफी और शिर्क के जली, बड़ा शिर्क और दूसरा खफी शिर्क जिसको हम कहते हैं छुपावा। तो शिर्क के खफी तो आपको पता है ना, स्याह रात में जैसे स्याह चट्टान पे स्याह चूंटी चल रही हो, ब्लैक एंट इन अ ब्लैक नाइट ऑन अ ब्लैक स्टोन, इतना ज्यादा हिडन होता है वो, रियाकारी है, मुनाफ़क़त है, ये शिर्क है। तो अल्लाह ताला जानते हैं जो गैब में भी है, जो तुम्हारे दिलों में भी है, और जो तुम जाहिर भी कर रहे हो, क्या अंदर है और क्या बाहर है, वो सब कुछ जानने वाला है। एक आदमी ने पूछा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कल निजात कैसे मिलेगी, फरमाया तुम अल्लाह को धोखा ना दो। वो बोला हम अल्लाह को धोखा कैसे देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल नहीं करते और अल्लाह के सिवा दूसरों की रजा चाहते हो तो अल्लाह को धोखा देते हो। तो अल्लाह ताला तो सब खुले छुपे का जानने वाला है। तुम्हारे अंदर कौन सा अकीदा है, तुम किसकी पूजा करते हो असल में, और जुबान पे किसका नाम लेते हो। वो कहते हैं ना सयकूलूना लिल्लाह, अनकरीब वो कहेंगे अल्लाह, तुम्हारी जुबानें कह रही हैं या तुम्हारा दिल भी कह रहा है, तुम्हारा तर्ज अमल क्या दिखाता है, तुम्हारा लाइफ तुम्हारी क्या दिखाती है, और तुम्हारी जुबान क्या बोल रही है, तुम्हारा दिल में अंदर छुपा हुआ क्या ख्याल है, वो सब कुछ जानता है। उससे किसी का जो शिर्क है वो छुपा नहीं रह सकता। यहां से आखिरी रुकू शुरू हो रहा है, और तो अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई। अब ये नहीं मान रहे, नई बात को समझते, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युआदून, आप कह दीजिए ए मेरे रब, अगर तू ज़रूर मुझे दिखाता है जो वो वादा दिए जाते हैं। क्या चीज़ थी जिसका वो वादा दिए जाते थे? देखें वो लोग शिर्क कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे इतराज़ कर रहे थे, हक़ से मुंह मोड़ रहे थे, हक़ वालों को तकलीफ़ें दे रहे थे। तो मोहलत का भी तो एक वक्त होता है ना, हमेशा के लिए तो खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। तो ऐसा करने पर अजाब का वादा था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप ये कह दें, आप ये दुआ किया करें कि जो इनको धमकी दी जा रही है अजाब की, ए अल्लाह अगर मेरी जिंदगी में वो अजाब आ जाता है, अगर तू मुझे वो अजाब दिखा देता है इनके ऊपर होता हुआ, तो रब्बी फला तजअलनी फिल कौम जालिमीन, ए मेरे रब तो तू मुझे जालिम लोगों में ना शामिल करना, मुझे इनमें ना शामिल करना जो ये जुल्म कर रहे हैं, मेरा शुमार इन जालिमों में ना हो। और ये इतनी अच्छी दुआ है, क्योंकि आप जिस कौम में भी रहते हैं, अगर आप समझते हैं वो मुशरिक कौम है, वो जुल्म कर रही है दुनिया में, तो आपको ये दुआ करनी चाहिए। क्योंकि फिर देखें जालिम को एक वक्त तक की छुट्टी मिलती है ना, एक वक्त तक की मोहलत मिलती है। अगर आप किसी भी बेईमान कौम में, ऐसी कौम में जो अल्लाह की नाफरमान है और अल्लाह की मानते हुए भी नहीं उसकी मान रही, तब भी जालिम तो है ना वो, तो मेरे ख्याल में तो अब इस वक्त जो जहाँ जहाँ पे भी हैं ये दुआ बहुत करनी चाहिए। अक्सर हम लोग जालिम कौमों के बीच में रह रहे हैं। हाँ इंसान खुद ना जुल्म करने वाला हो, अगर वो खुद ही जुल्म करने वाला है तो फिर तो अपने ऊपर खुद ही मांग रहा है अजाब, फिर तो वो खुद ही जालिम है ना। अगर आप खुद जालिम नहीं है तो ये दुआ बहुत ही अच्छी है कि अल्लाह ताला जब जालिम कौम पे तेरा इरादा हो अजाब भेजने का ना, मुझे इनमें ना करना, मुझे बचा लेना है अल्लाह। तो ये देखें अगर आप जुल्म में शामिल नहीं भी हैं तो तब भी जब अल्लाह का अज़ाब आता है ना, तो सिर्फ ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों पे नहीं आता जो लोग जुल्म करने वाले होते हैं, फिर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है ना, फिर क्या होता है, वो लोग जो साथ उनमें रह रहे होते हैं वो भी पिसते हैं, और उनके ऊपर भी सारा कुछ, वो सारे आफत मुसीबत, मसलन किसी जगह जलजला आता है ऐसी, या कोई आसमानी कोई और आफत टूट पड़ती है, कोई वबा फैल जाती है, वो लोग जो उनके अंदर रह रहे हैं जालिम कौम में, वो भी तो अंदर ही मारे जाते हैं ना। और फिर इंसान जिनके साथ रहता है उन्हीं के साथ उठाया जाएगा कयामत में, तो या अल्लाह मुझे उनमें शामिल ना करना, मैं इनका साथ देने वाली नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं, मैं बेशक इनके अंदर रह रही हूं लेकिन मेरा दिल इनके साथ नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ये दुआ सिखाई गई, हालांकि आप तो इनके साथ देने वाले नहीं थे। असल में बात ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आपके ऊपर अजाब है। लेकिन एक तो ये बात है कि हर कोई अल्लाह से डरता रहे, हर कोई अल्लाह ताला से पनाह मांगता रहे कि अल्लाह ताला जालिमों को अजाब देना तो उससे मुझे महफूज रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर जब सब के ऊपर आता है तो फिर वो भी अंदर ही शामिल हो जाते हैं, जो लोग बेचारे मासूम भी होते हैं सभी फिर लपेट में आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो पैगंबरों को निकाल लेते हैं, मोमिनों को उस वक्त में, देखो यही होता था ना कि अल्लाह ताला नबी को निकाल लेते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई क्योंकि आप उम्मत के लिए नमूना है, आप ये दुआ करें ताकि आपकी उम्मत भी आपके फॉलो करने में यही दुआ मांगे। तो जब उम्मत ये दुआ मांगेगी तो इससे उनको क्या मिलेगा, उनकी दुआ भी कबूल की जाएगी, आपकी सुन्नत पे अमल करने का भी उनको अजर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये दुआ बहुत ही अच्छी है। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 70 दफा से भी ज्यादा अल्लाह से तौबा इस्तगफार करता हूं। जाहिर उन्होंने तो कोई भी किसी किस्म का गुनाह नहीं किया, और गुनाहों पे तौबा की जाती है, लेकिन तौबा इसके जरिए अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करते हैं। तो इसी तरह जो ये हुक्म दिया गया, आप ये दुआ करें कि जब अल्लाह जालिमों को अजाब दे तो वो आपको इस अजाब में शामिल ना करे, तो ये दुआ भी आपके दर्जात को बुलंद करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनमें शामिल हैं या क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये भी एक दुआ है, तिरमिजी में आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह जब तू किसी कौम को फितने में डालने का इरादा करे, मुझे इस फितने से बचाकर मेरी रूह कब्ज़ कर लेना फिर उस वक्त। तो ये भी बहुत अच्छी दुआ है कि आप इसको भी मांगा करें कि अल्लाह जब तू किसी कौम को, जिनमें मैं रह रही हूँ, अल्लाह ताला तू इनको फितने में डालने का इरादा करे, अल्लाह इससे पहले ही मुझे उठा लेना, क्योंकि फितने जब फैल जाए तो फिर इंसान का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो आम जब अजाब आता है ना, तो बुरों के साथ नेक भी फिर पिस जाते हैं, इसलिए सलामती के लिए और इन चीजों से महफूज रहने के लिए ये दुआ बहुत अच्छी है। वैसे तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें रहेंगे और तौबा इस्तग़फ़ार लोग करते रहेंगे, उनके ऊपर अजाब नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो छोटे अजाब दिखाए, जैसे मसलन मैंने आपको कहत की बात की, जो उन लोगों के ऊपर कहत आया, तो अल्लाह ताला ने फिर इन लोगों को महफूज रखा था उससे। अगली जो आयत है ये पिछली से ही रिलेटेड थी, व इन्ना आला अन्नूरिया का माना आई तो हम लकौदिरून, और बेशक हम इस बात पर कि हम आपको ये दिखाएं जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं, ये हम इस पर कादिर हैं, हम इस बात पे कादिर हैं कि जो अजाब इन पर आए इसको हम आपको भी दिखाएं। और देखें कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि नबी की ज़िंदगी के अंदर ही कौमों के ऊपर पकड़ आ जाती है, और जैसे इनके ऊपर कहत आया था, और जैसे मैंने आपको बताया जंगे बदर में भी जो इनको शिकस्त हुई, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया था जो इन इनकी पकड़ हुई थी। तो इसलिए ये पीछे से रिलेटेड बात है कि बहुत सी कौमों का आपने पहले भी जिक्र पढ़ा है, तो पैगंबरों की ज़िंदगी में उन कौमों को अजाब भी आया और वो सफाए हस्ती से मिट गई। तो अल्लाह ताला ने इसी बात को यहाँ पे बताया, अल्लाह चाहे तो वो आपकी ज़िंदगी में दिखा दे, चाहे तो बाद में उनके ऊपर कोई अजाब आए। लेकिन जब पैगंबर या कोई भी दाई दावत देने वाला अल्लाह की तरफ बुलाता है, तो इस रास्ते में आपको मालूम है कि किस कदर रुकावटें भी आती हैं, और ये रास्ता आसान रास्ता नहीं है। ये वो रास्ता है जिसमें कि बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ इंसान को सहना पड़ता है। और अल्लाह ताला ने उसी वक्त का जिक्र किया है कि जब आपको दीन को फैलाने का आप काम कर रहे हैं और उस रास्ते में आपको मुखालफतें आएं, तो फिर आपने क्या करना है, आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। इदफा बिल्लती ही आसन उससैया, उस चीज़ के साथ दूर करें जो अच्छी है। बुराई को किससे दूर करें? बुराई को आसन से। सैया को किससे दूर करें? आसन से। बुराई बुराई से नहीं मिटती कभी भी। बुराई को अगर आपने दूर करना है, तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया, और वो तरीका क्या है? भलाई करो। आप एक दफा भलाई करेंगे, दो दफा करेंगे, तीन दफा करेंगे, चार दफा, 10 दफा करेंगे, आप मुसलसल करते जाएंगे, एक ना एक दिन बुराई करने वाला लाजमी जान लेगा आपके अखलाक और किरदार को, और वो लाजमी तौर पे आपकी तरफ अच्छाई का, भलाई का हाथ बढ़ाएगा। वो कब तक बुराई करता रहेगा? बुराई का जवाब अगर आप बुराई से देते तो क्या होता? वो और दूर हो जाता। लेकिन जब आप बुराई का जवाब भलाई से देते हैं, तो आप उसको अपने से करीब कर लेते हैं और पैगाम पहुंचाना आसान हो जाता है। देखिए, इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह हमीम सजदा में 24वां पारा आयत नंबर 34 में बयान किया है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअ, नेकी और बदी जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। बुराई को किससे दूर करो? भलाई से। फिर क्या होगा? फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, वो क्या बन जाएगा? ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। लेकिन अल्लाह ताला ने ये साथ फरमा दिया, ये बात इन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करें, और बड़े नसीब वालों के, और कोई इसको नहीं पा सकता। ये हर एक के बस की बात नहीं है। बुराई का जवाब भलाई से देना ये आसान नहीं है। ये बात बयान करनी तो आसान है, लेकिन करने के लिए बहुत सब्र चाहिए। क्योंकि जब इंसान के साथ कोई बुराई करता है, तो शैतान आके क्या कहता है? अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया आज, अगर तुमने इसको चुप ना कराया, तो देखना ये तुम्हारे कैसे सर पे चढ़ जाएगी। तुम जवाब दो ज़रूर। और इंसान को वो आगे आता ना, हाँ मज़ा, इंसान को वो मुसलसल पोक करता रहता है, नहीं तुम उठो और तुम बोलो, तुम रिएक्शन करो, तुम जवाबी कार्रवाई करो। इसी से मना किया है कि नहीं, भलाई के साथ जवाब दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने तो वो इखलाक देखना है ना, हमारे लिए तो रोल मॉडल वो ही है। आपका खुल्क कैसा था? आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, कभी किसी की दिल आजारी तक नहीं की थी। और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं, एक नहीं कई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिनसे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों के साथ भी, जिन्होंने ऐसी दुश्मनी की, अब आप सोचें, एक तो दुश्मन होता है ना, सामने आके लड़ता है, ठीक है, इंसान उसके साथ लड़ता है, उसको दुश्मन समझता है। एक वो दुश्मन होते हैं जो आपको लिए ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं, जो दोस्त के रूप में दुश्मनी करे। ऐसा ही होता है ना, इंसान को ज्यादा गुस्सा किस पे आता है कि ये जो अपना अपना बन के, जो मीठा मीठा बन के और पीछे से वार करता है, उसके ऊपर इंसान को ज्यादा तकलीफ होती है। और आपका एक दुश्मन था अब्दुल्ला बिन उबई, जो रईसुल मुनाफिकीन था, आपको मालूम है ना कि उसने क्या क्या हरकतें की थी मदीना। उसने कहा था मदीना पहुंच के, एक गजवे से वापस आ रहे थे, तो उसने कहा था मदीना पहुंच के जो इज्जत वाले हैं ना, यानी हम लोग, ये इन जिल्लत वालों को, इन जलीलों को निकाल के बाहर करेंगे। और उसने कोई अपने यानी टाइम में, थ्रू आउट, कोई मौका ऐसा नहीं जाने दिया जिसमें मुसलमानों को किसी न किसी तरह मुसीबत में ना डाला। उसने ये कहा था कि जो लोग आपके साथ हैं, जब तक वो आपका साथ ना छोड़ दें, उस वक्त तक इन पर खर्च ना करो। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे भी जो बदकारी की तोहमत लगाई थी, आगे आप सूरह नूर में इंशाल्लाह देखेंगे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रंज हुआ था, वो भी इसी ने कहा था, इसी ने ये तोहमत लगाई थी और इसको फैलाया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था अपनी सवारी को दूर करें, मुझे इससे बदबू आती है। और यही वो था जो जंगे उहद में ऐन लड़ाई के मौके पर, हम ये पढ़ चुके हैं पहले, कि वो अपने 300 साथियों को लेके वापस चला गया था, हमने नहीं लड़ना, हम नहीं लड़ सकते। ये वो आदमी था, यानी हर जगह पे इसने मुसलमानों को हत्ता उल इम्कान तकलीफ देने की कोशिश की। लेकिन जब वो फौत हुआ था तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए थे पढ़ाने के लिए। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं दौड़ के आपके पास पहुंचा, मैंने कहा या रसूलल्लाह कि आपको इसकी नमाज, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे, हालांकि आपको नहीं याद फलाने दिन इसने ये किया था, फलाने दिन इसने ये किया था। तो कहते हैं मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बातें गिनवाता रहा, याद दिलाई, याद नहीं आपको, ये ही था वो जिसने ये किया था। आप मुस्कुरा दिए, आपने फरमाया अपनी राय को रहने दो। जब कहते हैं मैंने बहुत इसरार किया तो फरमाया मुझे इख्तियार दिया गया कि मैं इस्तग़फ़ार करूं या ना करूं, सो मैंने इस्तग़फ़ार करने को इख्तियार किया। अगर मुझे ये इल्म होता कि मैं 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करूंगा तो इसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, तो मैं 70 दफ़ा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करूंगा इसके लिए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। और इसी चीज़ को देख के, क्योंकि सब लोग जानते थे कि इस शख्स ने क्या किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने अखलाक क्या है, उसकी कौम के, अब्दुल्ला बिन उबई की कौम के 1,000 आदमी इस्लाम ले आए थे। यानी लोग कहते थे ये कैसे हो गया। और आपको पता है फतेह मक्का के मौके पे भी इतने लोग इस्लाम में क्यों दाखिल हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देख के। अबू सुफियान के बारे में आप जानते हैं, हम कितनी दफा पढ़ रहे हैं, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया। कितना बड़ा दिल चाहिए वाहशी, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्हों को शहीद किया था, उसको माफ़ कर दिया। हिंद, जिसने हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाया था, उसको माफ़ कर दिया। मक्के के जिन जालिमों ने आप पे जुल्म व सितम के पहाड़ डाए थे, जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने सद्दे की हालत में आप पे ओझड़ी रखी थी, जिन्होंने आपका बायकॉट कर दिया हुआ था, शेबे अभी तालिब में आपका ऐसा बायकॉट किया हुआ था कि यानी फाकों भूखों कितने दिन गुजर रहे थे और चमड़ा तक खाने के लिए यानी वो नौबत आ गई थी, उन सबको माफ कर दिया। जिन्होंने जंगें की थी आपके साथ उनको माफ कर दिया। तो हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सीख रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो फरमाया है सूरह शूरा में कि जिसने सब्र किया और माफ कर दिया, बेशक ये बहुत बुलंद हिम्मत वालों का काम है, ये मिन अज़्मिल उमूर है, बड़ी हिम्मत का काम है। हम कहते हैं ना ये बड़ी हिम्मत का काम है, इसने ये किया, बड़ी हिम्मत है इसके अंदर, इसने फलां चीज की है, माफ कर देना और सब्र करना ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। ये बड़े खुश नसीबों को ये चीज नसीब होती है। हज़रत आयशा खुद फरमाती हैं कि मैंने नहीं देखा कि कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ज्यादती की गई हो और आपने उसका बदला लिया हो, यानी अपनी पर्सनल चीज़ के लिए किसी से बदला लिया हो। लोगों ने गालियां भी दी, लोगों ने थूका भी, लोगों ने, ऐसा भी आदमी आया था जिसने चादर गले में डाल के और इतनी जोर से खींची थी कि सांस घुटने वाला जैसे हो जाता है इंसान का, इस तरह से चोक करने की कोशिश की, ऐसे ऐसे भी लोग आए थे, लोगों ने बदतमीजियां की। हम तो अपनी शान में एक गुस्ताखी किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी ने मेरी शान में गुस्ताखी की, तो मैं क्या चीज़ हूँ। वो ही लोग अपनी शान में कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते जो मुतकब्बिर होते हैं, जिनमें तकब्बुर है, जो अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं। कौन मेरे बारे में कुछ बोला, इसने एक कहा है ना, मैं तो अब 10 सुना के ना आई तो फिर मुझे तो चैन नहीं आएगा। तो ये तो हमारे अखलाक हैं आज, जब भी तो कोई मुसलमान भी मुसलमान के अखलाक से मुतासिर नहीं, गैर मुस्लिमों बेचारों ने तो क्या होना है। कोई भी हमें देख के मुसलमान नहीं होता कभी भी, आज तक मैंने नहीं सुना किसी को कि किसी ने कहा कि मैं मुसलमानों का किरदार अखलाक देख के मुतासिर हूँ। वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार अखलाक देख के मुतासिर होते थे, हमारे तो ये हालात हैं कि हम कुरान पढ़ के भी हमारे अखलाक ऐसे हैं कि लोग पनाह मांगते हैं। तो हर कोई अपने आप को देखे, दूसरों को नहीं सोचे कि फलाने का अखलाक ऐसा है, फलां का अखलाक ऐसा है। देखिए देखिए मेरा अपना अखलाक कैसा है, क्या बुराई होती है तो मैं उसका जवाब किस कॉइन्स में देती हूँ। बुराई का जवाब बुराई से देती हूँ, उतनी बुराई से, उससे ज्यादा से, या भलाई से। इन तीन तीन ऑप्शंस है ना मेरे पास। अगर मैंने बराबरी का दिया बदला तो ठीक है, जायज तो है, मगर आपके पास बड़ा अच्छा चांस था अजर कमाने का, आप उससे महरूम रह गए। और बदला देते वक्त ये आपको बहुत सोच समझ लेना चाहिए कि जब बदला दे रही थी तो आपने क्या बदला देते वक्त उससे ज़्यादा बढ़ के तो नहीं कर दिया। अपने तौर पे तो हर कोई कहेगा कि नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक किया, वो यही डिज़र्व करती थी। लेकिन आप ये खुद सोच लें कि ये तो अल्लाह ताला ने फैसला करना है कि जब आप बदला लेने लगी थी तो आप बदला लेने में उससे बढ़ तो नहीं गई जितनी ज्यादती आपके साथ हुई थी। अगर उससे एक जर्रा बराबर भी बढ़ गई ना, जर्रे बराबर भी, तो मैं यामल मिसकाला जर्रतिन शर्र यरा, वो शर का भी अल्लाह ताला एक एक जर्रे के बराबर शर भी होगा ना, उसको भी वो वहां पे दिखाएगा अल्लाह ताला उसको। ये तुम बढ़ गई थी। तो जब हम बदला लेने लगते हैं ना, वो तो जिसने किया उसका वो जाने और वो जाने अल्लाह ताला के साथ। लेकिन हम जब बदला लेने लगे, हम जरूर ये जान लें कि मैं इंच बराबर भी बढ़ गई तो मुझे इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आप मजलूम नहीं रह गई, अब आप क्या बन गई? जालिम। अब आप खुद जालिम हो गए क्योंकि आपने बदला लेने में ज्यादती कर दी। तो बराबरी बिल्कुल एग्जैक्टली करना, ये कितना मुश्किल काम है ना, कितना मुश्किल है। अब वो बहुत कम ही चांस है कि हम एग्जैक्ट एक बराबर कर दें, जर्रे बराबर की तो कमी बेशी हो ही जाती है। आपने कम लिया बदला तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप बढ़ गए जर्रे बराबर तो फिर अपनी खैर मनाइए, क्योंकि जो बढ़ गया जर्रे बराबर तो फिर वो जालिम हो गया। अब वो तो खत्म हो गया जो उसने किया था, अब आप मुजरिम बन गए। अब उसकी नहीं पूछोगे, वो आपकी होगी। और जिसने माफ कर दिया तो इसके बदले में उसकी तो पूछ होगी, जिसने पहल की थी वो तो अल्लाह ताला उसको देगा जो उसने किया। लेकिन आपको क्या मिलेगा? आपको एक तो उसकी नेकियों में से मिल जाएगा, उसने आपके साथ ज्यादती की, और आपको सब्र करने का भी अजर मिलेगा और आपको माफ करने का भी अजर मिलेगा। तो फायदा किस में है, हमारा फायदा किस में है, आप खुद ही सोच लें। लेकिन शैतान ये करने नहीं देता हमें ना, वो मुसलसल हमें चैन से बैठने ही नहीं देगा जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे। और आगे उसकी बात की गई, मगर पहले मैंने ये हदीस मुकम्मल कर लूं कि बुखारी की यह हदीस है कि हज़रत आयशा फरमाती, मैंने कभी नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ज्यादती की गई और आपने उसका बदला लिया जब तक अल्लाह की हदूद को पामाल ना किया गया हो। अल्लाह की हदों को किसी ने पार किया है, मसलन ऐसी कोई अल्लाह की हदूद को वो किया है, मसलन किसी ने जिना किया, कत्ल किया, तो जाहिर है उसको तो सजा मिलनी है, वो तो अल्लाह की हद है, वो तो जारी होगी। मगर खुद अपने तौर पे अपनी किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादती हो, उसका नहीं कोई। आप कोई मिसाल ला के तो बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तो हम बहुत दम भरते हैं, चलो उतना नहीं माफ कर सकते, उस हद तक नहीं पहुंच सकते, तो हमें कौन सा किसी ने थूका है हमारे मुंह के ऊपर, या किसी ने हमें आ, 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 कोई मारा है, या किसी ने हमारे रास्ते में कांटे बिछा दिया, या किसी ने हमारे घर में कूड़ा फेंक दिया, या किसी ने हमारे घर में और कोई हमारी जात के ऊपर ऐसी कोई फिजिकल हमले किए हैं? क्या कर दिया ऐसा किसी ने? हम में से किसी के साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कोई टॉर्चर के वाकयात नहीं हो गए। लेकिन फिर भी हमारा ज़र्फ कितना छोटा है ना, हमारे दिल कितने छोटे हैं जो किसी को माफ करना जानते ही नहीं। तो क्या करो जब कोई तुमसे बुराई करे, तो तुमने क्या करना है? आसन के साथ बदला दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यही तलकीन की है, बुराई का जवाब अच्छाई से, बदी का जवाब नेकी से दे। हज़रत उकबा फरमाते हैं कि मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, मैंने आपका हाथ पकड़ने में पहल की और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए सबसे अच्छे अमाल कौन से हैं। आपने फरमाया, ए उकबा, जो तुमसे तोड़े, तोड़े तोड़ना क्या है, बुराई है, तो तुम क्या करो, तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। ये क्या है, जोड़ना क्या है, भलाई। जो तुमको महरूम करे, महरूम करना क्या है, बुराई, उसको अता करो। ये क्या है, हसना, भलाई। और जो तुम पर जुल्म करे, जुल्म करना क्या है, बुराई, उससे एराज करो। एराज करना क्या है, भलाई। अब ये अखलाक हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किए गए, तोड़े उससे जोड़ो, महरूम करें तुमको ना दे तुम उसको दे दो, बुरा सलूक कोई करे तुम अच्छा कर लो, हक बात कहो चाहे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। बुराई का बदला बुराई से देना तो देखें बहुत आसान है, उसमें आपकी क्या बहादुरी है। बहादुरी तो ये है कि जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ भी अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में इतनी वुसअत पैदा फरमा दे कि हम किसी की बुराई का जवाब भी भलाई से देने के काबिल हो जाएं। हम तो जब तक ईंट का जवाब पत्थर से ना दे दें, हमें रात को नींद ही ना आएगी। जब तक दूसरे से तू तकार ना कर लें, तब तक हम चैन से नहीं बैठते। तो देखिए खास तौर पे, यहाँ पे तो खास तौर पे किसके लिए कहा गया, एक अमूमी तो मैंने आपको बता दिया, अब एक खास उसमें भी कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि अगर लोग, जब आप दीन को फैलाने लगते हैं, दीन की बात करते हैं, लाजमी मुखालफत होगी। अब ऐसा क्या होता है, कोई लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन जब इंसान ना दीन के बात करने के लिए खड़ा होता है ना, तो ये बड़ा तकलीफ दह सफर है। कोई कहता है, लो भाई अभी जुमा जुमा दिन 4 दिन तो हुए हैं इसको पढ़ते हुए और आ गई है हमें बताने के लिए। कोई कहता है, कोई खुद तो पहले अमल कर ले फिर दूसरों को भी नसीहत करना। हर एक ना पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लेता है, जो दीन के लिए बात बताने के लिए खड़ा होता है ना, लोग समझते हैं कि अब हमने 2 आंखों से नहीं, हमने इसको 4 आंखों से देखना है। अब कोई गलती करे तो सही, अब अल्लाह तो नहीं इसका जज, हम इसके जज हैं, ये पहले हमारी अदालत में खड़ा होगा, हम इसका फैसला करेंगे। तो जब लोग ऐसे करने लगे ना, तो फिर आपको क्या करना है, उस वक्त क्या करना है आपको, अपना मामला रब के हवाले कर देना। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहनु आलमु बिमा यसिफून, आप फिक्र ना करें, आप तसल्ली रखें, जो दीन के काम के लिए खड़ा होता है और उसको मुश्किलात आती हैं, लोग परेशान करते हैं, तो आपने ये सोचना है मेरा रब जानता है, लोग हमें क्या कह रहे हैं, लोग हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं, लोग मुझे कितने ताने दे रहे हैं, कितने मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने अपना मामला अपने रब के हवाले कर दिया। इसलिए क्यों ये ऐसा करें आप, इसलिए क्योंकि अगर आप उसको जवाब देने के लिए खड़े हो जाते हैं कि अब मैं इसको जवाब दूंगी और अब मैं ये करूंगी और अब ये इसने कैसे मिजाल हुई और हम तो इसकी भलाई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो आपकी सारी एनर्जी किस में लग जाएगी, जवाब देने में। आप फिर भलाई का तो काम करना आपका रह ही जाएगा, दावा के ऊपर आप क्या सोचेंगी, आपका तो दिन रात यही दिमाग में चल रहा होगा, उसने ये कहा था, अच्छा अब मैं ये करूं, फिर आप फोन उठाएंगी उसको बताएंगी, उसको देखा तो मैं, उसने मुझे ये कहा है, हम तो इनकी भलाई का सोचते हैं ये ऐसे करते हैं। नहीं, जाने तो उसको, और ये मामला जिसको पता चलना चाहिए उसको पता चल गया, अब आपको फोन कर उठा उठा के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तो ये तो फिर सारा दिन आप यही काम करती रहेंगी, फिर खाका आप दावा का काम करेंगे। तो जो दावत देने वाला होता है ना, उसको क्या करना होता है, ए दफा बिल्लती बिल्लती ये आसन, किस चीज से दूर करना है, भलाई के साथ बुराई को दूर करना है। और आसन क्या है फिर इस मामले में, खामोशी, जुबान भी खामोश हो जाए, दिल भी खामोश हो जाए। देखें हजरत अनस की रिवायत है, बड़ी प्यारी एक बात है कि एक आदमी ने ना अपने मुसलमान भाई से वो बात कही जो उसमें नहीं थी, मतलब ऐसी कोई बात कह दी, तुम तो ऐसे ऐसे हो, हालांकि वो बेचारा वैसा नहीं था, तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया। अब इस जवाब को हम सीख लें, फिर उसके बाद हम भी यही कहा करेंगे, कोई हमें कुछ भी कहता है, तुम बड़ी ये हो, वो फलान हो, तुमने ऐसे किया, वो कहते हैं अगर तुम झूठे हो तो मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूँ कि वो तुम्हें माफ़ कर दे, ये है आसन। और अगर तुम सच्चे हो, वाकई जो तुम बात कह रहे हो वही चीज़ मेरे अंदर है, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मेरी इसलाह कर दे। सुबहान अल्लाह, ये है अखलाक। हम बड़े अच्छे अखलाक वाले बनते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमारे अखलाक तो इतने अच्छे हैं, हम तो लोगों से मुस्कुरा के मिलते हैं और लोगों को अपने घर दावतों पे बुलाते हैं, और हम जो है ना बस पता नहीं हमारी क्या हमारी अखलाक के तो खुद ही अपने मुंह मियां मिठू बनते रहते हैं कि हम बहुत ही अखलाक वाले हैं, हम तो बड़े पोलाइट हैं हम तुम्हें। मगर आपके अखलाक का तो तब पता चलेगा ना कि जब आपके साथ कोई बुराई करे, तो फिर आपका अखलाक क्या होता है, आप गुस्से में पागल हो जाते हैं, आप बिल्कुल अपनी अकल छोड़ देते हैं, आप शैतान का अलाइकार बन जाते हैं, तो फिर आपके क्या अखलाक है? बुराई का बदला आपने बुराई से दे दिया, आपका अपना अखलाक क्या है फिर? आप भी फिर बुरे ही हैं, आपने उससे डबल बुराई कर दी है, उसने एक लगाई थी आपने दो लगाई हैं, तो आप आपके कौन से अखलाक अच्छे हैं फिर? लेकिन देखें ये अल्लाह ताला से मांगने वाली चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी हदीस भी सुनाई थी ना कि जैसे रिस्क तकसीम होता है, इसी तरह अखलाक भी तकसीम होते हैं ना। तो अल्लाह ताला से अखलाक भी मांगा करें कि अल्लाह हमारे अखलाक अच्छे कर दे, हमारे अखलाक ऐसे हो जाएं कि लोग हमारी तरफ खींचे चले आएं, तभी वो आपसे कोई दीन की बात कोई अल्लाह की बात सुनेंगे ना। अगर आपके अखलाक ऐसे हैं लोग कहेंगे भाई खुदा की पनाह इससे ये तो गुस्से में आ गई, तो फिर क्या होगा, तो वो फिर बताएं आपकी तरफ कैसे आएंगे ना? आप तो तभी अल्लाह के दीन की बात भी तभी फैला सकते हैं, अल्लाह के दीन का काम भी तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाए। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही है, अब हम सब के लिए कितने ज़रूरी हैं कि हम अपने अखलाक बेहतर करें। ये ना हो, अल्लाह ना करे कि कोई हमें ये कहने लगे, किसी दिन कोई ये खड़ा होकर कह सकता है कि ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं ना देख ली हैं बड़े इनके अखलाक ये तो ऐसे ऐसे हैं, तो फिर आप किसके लिए यानी बैड नेम लेकर आए? लोग आपको आपके नाम से शायद जानते भी ना हो, लेकिन कुरान की वजह से क्लास की वजह से ज़रूर जानते होंगे कि ये वो हैं जो कुरान पढ़ने वाले, तो फिर वो आपका नाम लेके नहीं कहते कि ये फलां फलां का अखलाक बुरा है, वो कहते हैं वो कुरान पढ़ने वाले, वो दीन वाले।